already done. Now, do you think anybody know? No. You're running in the cycle of routine of daily life. Running after your own bread. Do you think you have time? You have thinking? Nobody will have time to think. Okay? What happened to George Bush? George Bush went and went above the limit of the regular oppression. By this way, actually it's almost like I'm attacking you under cover. George Bush takes the cover off. That's all he did. Meaning it was going on, but in different scale.
Yeah.
By this way, now it starts, the whole world starts having some awareness and awareness.
Do you subscribe the views that this is Islam versus Christianity all over the world?
Islam versus Christianity,
yes.
Not exactly. But actually what happened, because if you study the history, Christianity always been a label. Because you find out the people who's running the show, yes, they can use Christianity, but not for Christianity. It's for label, for power. The bottom line, power and fame. Power.
Now, all American actions are stated to be for oil, for the wealth of oil of Arab countries.
Oil is a small thing, believe it or not. Sure, oil is big, but it's not the one. You see, today, if we are here right now, and I won't control you, what I will do? I find somebody with muscles. I will attack him, abuse him in front of you. This attack and abuse, what it will do to all of you? You will fear. You will know my muscle is so big. And what happened? Now all of you get the message from me. Is you have to obey me. You have to follow my muscles. And otherwise, I will beat you the way I beat others. But this way today is more deeper than you think.
You are a Muslim scholar.
Not exactly. I'm not a big scholar.
So what are you, why are you doing all these things, traveling all over the world and coming to Jharkhand and coming to...
No, believe it or not, Ranji was a very unbelievable, because I'm not in Delhi. I'm not in Bombay. I'm not in Calcutta. I'm Ranji. What is Ranji? What's Ranji in the map?
What attracts you? What attracts you in Jharkhand?
No, I'm a friend of Dr. Jameel. That's it.
Okay.
He invited me. Okay. But what happened? I believe I'm a human being. Okay? Whatever, where I go, I try to do good. That's it.
So in the last speech, when you were here, last you spoke much about Islam and how the Islam should look like. So what is your opinion about the present shape of Islam?
The present shape of Islam is very bad. Because you have to know, we are just out of colonialism again. And the era of colonialism, 200, 300 years, what they do? The first thing they do, they corrupted religion. They corrupted your culture, they corrupted your belief. And they make sure once they leave, they put corrupted people after them to continue the corruption. And you have the regular people is illiterate, ignorance. You see? And today, to educate the illiterate, it will take many generations to come. Cannot be overnight. It has to be with love and compassion, because you cannot give them speech. You have to give them love. You have to give them compassion to make them believe you really care for them. And it has to be real, it cannot be fake. You see? And little by little, you can drop little by little of the seed of knowledge. And you have to do it with the youngest. The young generation is the one. Elder is gone. Elder is gone. Because elder people you cannot educate. They're very stuck in their own way. Learn it or unlearn it. You cannot talk to them. If you're an old learned person, he's stuck in his own way. If you're an ignorant, also elder, you cannot talk to him. Kashmir is the only future with whom the young generation. You see?
Yeah, you are spending a lot of money on books and literature. Last time it was they were
a sewer system, open sewer system. And when I came in here, I saw this open sewer system, I was shocked. I only read about it. I never saw it in my life. And to see it alive in 20th century, this is really, this is like a slap in the face. Because this particular issue, if you do not fix it, you're not going anywhere. You're just going to spread disease after disease, disease after disease, and all your economy in medication. And you have a very poor manpower coming in life. And if you read this book, Citadel is enough. And the citadel, meaning the citadel of morals and value. What happened if you learn to be a doctor and all you care about to be greedy, go to Europe or America, make money and leave your own people suffer? You see? And all I'm calling people to go back to their own society and correct. Don't wait for somebody outside to correct. By the way, my call is not a call for Islam. It's a call for humanity.
Most of the Arab countries are being ruled by kings. While you are hearing a democratic...
It was a very simple people. Very simple. You make it look like so big, and it's not true. And I do not believe it is, and will never be. Big is corruption. Big is a show.
So you are against the kingship?
You see, I do not talk about the king. You are the one who opened king. Focus your thinking and ask yourself why. Why we attack king now? King or president or anybody in the earth, it doesn't matter. If we are bad, don't blame nobody. Start by yourself, you will be a winner. Because today, we are both, right and left. We are both. Everywhere is both. One way you want to benefit your own people, or you try to please the manager. Or you try to please whom will pay you. Do you have a moral value by yourself? Look at our news all over. How corrupt. Who pays the price? Mankind. And who is a part of the corruption? Is the king? Don't blame king. Don't blame president. Blame ourselves. This is my message. If we start blaming ourselves and say, I'm a part of society, instead of blaming everybody, I blame myself. And I have to start by myself, do whatever it is possible. That's it.
What is the greatest problems India facing these days, today?
Today?
Yeah.
It's not today, because the problem is very old. You see, we cannot look at a tree, and the tree's leaf is falling, no fruit, and say, oh, why the tree do not have fruit today? It's not today. It's the corrupted soil, the corrupted roots. If I look to the leaf and try to fix it, I would be dumb. I do not know ABC in agriculture. And even if I try to fix it by spraying, it will not do anything. Next season, same. Leaf will fall, no fruit. And this is what we're trying to do today. We talk about the superficial. We talk at blaming everybody. And I'm the first criminal. If everybody waved finger at himself and said, I'm the first criminal, how many reporters is honest? How many reporters honest report whatever they say without no exaggeration and no lie? How many reporters work for belief and feeling for their own people? And once they go to major city and somebody gives them money, they tell them exactly what to say, what you ask, for what purpose, and you start manipulating people for your own agenda. And this all over the earth. Is really the news covering the reality of people? No. It's a fake. It's a fake. And who did it? you, everybody. We are part of the problem. We are the problem. Because the first thing, at least, report everything the way it is. Don't add your own corrupted view. You're not a reporter anymore. If you're really an honest reporter, do like some Europeans, some. What they do, you report whatever you say, whatever you see. But once you add your own from the beginning and end, and add your own title, your own word, you make it by yourself. How many people today beating people, and you end up writing whatever you like, and putting word in the people's mouths, or manipulating the topic to fulfill a certain program in your own mind? Did I do that? No. How many people making interview in a video camera, and by the time it reached the station, it become a few seconds completely out of what the person said? For whom you work? Do you work really for belief? Do you work for the people? Or you work for your own job and that's it? And you sold already yourself just for a small room. And this all over. What do you believe? What's your heart? Do you have a heart? Do you have a soul? Do you have the citadel of principle in your heart? And you do not allow anybody to live by you, right and left? Or you just become like a robot, programmed. Whatever your manager tell you, you do. Providing of what you see. Today I look at the news, I feel like I want to throw up. And everybody cut and paste whatever they like and manipulate the public. Are you working for a king? What's the difference between you and the corrupted king? You are a king, but a king of corruption, more than the king of money. The greatest problem facing Muslim is you too far from the original Islam. They need a lot of sincerity, a lot of truthfulness, and they have to go back to the basic teaching of the Prophet. And they have to revive their own learning and teaching method. It is so close, so old, and it has a lot of corruption. It's not pure. A lot of corruption from colonialism time, which is 200-300 years ago. And we do not know.
Now in India, Islam is divided in many groups, like Brahmi and Dawat Islami, Jamaat Islami, Tablighi Jamaat. What do you think it?
You said it already. It's divided. And that is only in India, it's all over. Same thing.
It is right or wrong?
Sure is wrong.
Wrong?
Sure.
Who is right, who is wrong?
Okay. Once you see division in any religion, meaning the people went too far from the roots of their own religion. Because no religion asks you to be divided. You see, nobody asks you to be hating each other or disliking each other or label and names. But this was one of the colonialism again, sickness. They give it to the people and now colonialism left, but we still follow. You see, what they call is divided to conquer. You cannot gain anybody until you divide. When you divide, you lose power. When you lose power, you conquer. Same identity.
What do the Islamic person about this matter?
You see, division starts from top to bottom. Top to bottom. By this way, the people is not divided. It's the learned people is divided. You see, because people, the majority of people today all over is just a follower. By this way, whatever the learned person say, they follow.
how to end of this division. What I mean to, what we will do.
You have to go back and start learning the basics. Because the majority of Muslims do not have even the basic.
In Hadith Sharif, to say Islam is divided into 73 groups.
Yeah.
So he's called Islam is divided into 73 groups. His call is really right.
Yeah, he said in the end of time, Islam will be divided into 73 groups. And he said all of them in hellfire, Jahannam, except one. He asked, which one is that? He said, man ana alayhi wa ashabi, whatever I'm doing and my companion. But today, if you talk to any group, they said, I'm following Rasulullah. I'm following Rasulullah. I'm following Rasulullah. Everybody follow Rasulullah, but everybody follow it from their own perspective. I will tell you one thing you have to do. All of us, okay? You have to study revelation according to the sequence of revelation. Meaning you have to go step by step, study Quran, the way it revealed, and grow with it. And don't go too far. Don't try to go to ideology. And study by a scholar who died many hundred years ago. The ones they have no ideology. Because all these groups, all of them, is younger than 100 years old. All of them generated after colonialism, exactly. They are new. They not read. And before that, you have a gap of approximately 300 years under colonialism and after the falling down of the Ottoman Empire.
Sir, what is your opinion about Osama bin Laden?
You see, Osama bin Laden and many people like that, I can explain it to you. When I push you in a corner and you start fighting me, okay, doesn't mean it will help, but you're trying to survive. A lot of young people today in the Muslim Ummah, when you push them in the corner from economy and religion and everything, they just try to survive. And everybody coming with his own way. But it hurt more than it benefited. And in Islam, it's very simple. You won't know the action of anybody, see the amount of benefit and the amount of harm. And Islam teach us, benefit much better than harm.
And your opinion about Saddam Hussein?
Saddam Hussein, people do not know. Saddam Hussein was never a Muslim, really. His name is a Muslim. But he was a Ba'athi group, or belonged to a group, is completely like socialism. Okay? He never studied. He never even prayed except a few times in his life. You see? He was fighting Islam in his own country. He oppressed Islam so much. He destroyed Islam in Iran.
But Iraqi Muslims are fighting that.
Say it again?
Iraqi Muslims are fighting to that. Bush
Iran. Now in these times, America is attack on only Islamic country.
You see what happened? Today, we do not know what's going on. Is a verse in Quran is enough for all the Muslim and non-Muslim alike. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah will never change the condition of any nation unless they change what inside. Today we're blaming everybody, but we're not blaming ourselves. Are we good people? Are we honest? Are we clean? Are we just even to each other? We are too far. By this way, if you study Islam and you study Quran, it is Sunnah of Allah. If we spread oppression among each other, Allah sent outside the oppressor to oppress us.
Now in this time in Indian Muslims culture have dowry. What do you think about it? Dowry is right or wrong?
Dowry is supposed to be the right of the woman, meaning man has to give dowry. This is Islam. Man give to the woman for her own protection, for her own good. In case a man divorce or leave her, she have her own money to support her son. She doesn't have to have a need. But so it's a teaching of Islam, the man pay dowry to the woman, and doesn't have to be big. It has to not be big at all. It is up to her to decide how much.
Now in this time in Indian Muslim culture, men to give woman 1 lakh, to give 1 lakh money as a dowry. This is right or wrong?
This forbidden. Forbidden in Islam. And any imam allow it, he cursed by Allah, mal'oon. You see? Because imam and learned people should not do that. Should not follow culture and follow Allah wa Rasul.
Here Indian Muslims' culture is suffering from that dowry cases.
Believe me, all the learned people...
also talaq.
Yes.
Talaq is more there, here, in Indian Muslims' culture.
Yeah. What happened again? This is the price of oppression. And oppression because ignorance. Because nobody know about the manner of husband and wife. The basic right of husband and wife. And sometimes you ask, I want to know about the duty of wife, duty of wife, duty of wife. Where is the duty of a husband? You see, you want the manner of wife. What about the manner of a husband? The lack of education. And the lack of education, who is responsible in front of Allah? The learned people. They will suffer so hard. Because their duty is hard. But they sold their deen for a small amount of money.
جناب اروند پانڈے صاحب اور رپلائی
کون تم بیٹھو نا کنورٹ کرو گے نا
اور اب دوستو آئیے باضابطہ ہم اس سیمینار کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میری گزارش آج کے اسپیکر برادر احمد موحد سے ہوگی جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور وہاں پہ کمپیوٹر انجینئر ہیں کہ وہ اپنی بات بالکل تفصیل سے ہمارے سامنے رکھے. برادر احمد
موحد. Great details.
Great details. Just to
start the second?
Oh, you start?
Yeah.
Oh, you want to translate? Does anybody need translation in Hindi?
No, not required. Translation is required or not? Translation is required?
No need. No translation?
Alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. My dear brother, in humanity, in general, today humanity facing a crisis. And the main crisis is we watching human being under crisis, and we watching them in our street, in our neighborhood. And it become entertainment. What happened to the human being heart? Are we really have any value? Do we have a heart? Do we care about each other as a human being? To my own society? Do you think if I'm a doctor, I cannot participate and benefit my own people? Do you think if I'm an engineer, for agriculture, I have no benefit to my own people? What happened? To know what happened, we have to go back at least 300-400 years ago. When colonialism started to care about one country after another, when they try to colonize any country, the first thing they do, they have to corrupt the religion and corrupt culture. And what they used to do, all the honest, learned people, they killed them. All the good people, the good books, they burn it. Or they took it to Europe, or whatever. Now, you have a generation have left, your kids have nothing. They're more empty than you. And once your kid is more empty than you, now what we do? We spread our own method of slavery. To make you run
after your own provision. To make you so busy, and once you're so busy, I will also corrupt it.
But himself. How many people think about my neighbor, the people around me? How many people ask themselves, is me a generous or me a stingy? How many people would you go to college if you are young? Ask yourself, why I go to college? Why I won't be a doctor or an engineer? To help humanity? Or because this job is a big money, as a new business for me? When I look to doctors all over, doctor used to be called the angels of humanity, the one who to care about people. But today, you have Ruby, I can help you. You do not have Ruby, I cannot help you. Today, everybody almost have TV. You watch crisis after crisis in a TV. And what you do about it? You eat, you drink, you go to sleep, and become entertainment. What happened if the blood of a human being become cheap?
He said, any nation do not correct. I was talking to Mr. Irvin Bobby, and I tell him, today, it has to be me and you. What the outcome, believe it or not, war, internal war. War from the poor against rich. Why? Why all this will happen? And why it can happen? Injustice. Any time injustice in any society breed crimes, breed corruption. Now, if you are a Muslim sitting in this audience, ask yourself, what is my role in life? Is me a Muslim? How you can be a Muslim and you do not care about it? How you can be a Muslim and just watch? They just ask me now. They ask me a question. What is the question? The question they ask, what do you think about the culture in India where in Muslim society, a woman has to pay big dowry to the man? And according to Islamic teaching, this is completely forbidden. This is not the teaching of Islam. And any imam, any scholar, any learned person, he allow it, he's mal'oon. He's cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Because now he's going against what Allah teach him. He's going against what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the one he believe in him, teaching. What it mean? Imagine when you have society, the learned people is corrupted against their own belief. What else left? Tell me, if I am the one who's supposed to be people, trust me, I am corrupting their own faith. I am changing their own faith. I am making them stop. When I see today in India, in a night of wedding, when you marry, you have to make a big wedding. How much? 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 10 lakh. Tell me, what justice is there? With the same amount of lakhs, is this cannot be a beginning of your business? A house, a car, something that can benefit you? Is this not, if you are wealthy, is this not can be enough to take care about all your neighbors for even a month or 2 months? Tell me, which one is more important? To feed people one night? And to have all this money one night? And everybody suffer around you? What kind of humanity is that? Do I need a show? If I marry a person, and I marry the person for love and compassion, for humanity, to bring a nucleus of a nation, which is a family, regarding of what faith and whatever. How you started? You starting by oppression over your own people in society? Do we really we need this night? For whom benefit? Tell me, whose benefit? Whose benefit to spend 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh? For whom benefit? Just a show to make believe. Do we really need all this food? Do we need all this show? or the poor people deserve it. What do you think? And at this time, if you are a Muslim, why are you doing it? Is your own Quran teach you that? Is your own Prophet teach you that? Or it's just a habit and culture? And even if it's a habit and culture, if you study any civilization, habit and culture can be good or bad. Doesn't mean it is concrete. If it benefits me and benefits society, we grow it. But if it harms me and harms society, we have to stop it. Do I have to be dirty?
What is a crisis? Which one is high priority?
How much India is spending medication? How many manpower and how many families suffering from major disease?
One night today, just tonight, in Ranchi. How many people average will get married tonight?
10, 15, 20, 30. Give a number.
30. Rate it to the benefit of society. It will not be benefit to you.
Or you buy your own house, or buy in your own place, instead of sleeping with your family, like roaches together, and you have privacy between your husband and wife? Tell me, which one it makes sense? Please, anything is to say, if it's wrong, correct me. I'm ready to be corrected. Tell me, does this make sense? This night, who's benefit? I'm just giving you an example, just a slice of example. Do we need that? In America, I say it to people, if you are a Muslim and you study your own Islam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he teach you, you have to take care about the neighbor, 40 from every direction, 40 from every direction, you're responsible about them. Do you know that? Do you know the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Angel Jibreel came and asked me to take care about the neighbor to the point I was thinking he will command me to, as a person, his neighbor inheriting him. This how much the right of neighbors. Do you know what I said to people today? If me and you start to care about each other as a neighbors, the condition will finish. The condition will finish just if we follow one piece of element, neighbors. So I look at you, see what you need. If I have little bit, I share with you. If you have little bit, you share with me. What do you think? Is this not humanity? To take care about your neighbors? If you're not good to your neighbors, the ones who live next to you for 10 years, 15 years, 5 years, who will take care about them? Do we have to wait for outsiders to come to help us? People ask me about George Bush, Saddam Hussein, Osama bin Laden, kings, president. I tell them, excuse me, who am I? Who am I? I'm nobody. Really, people do not know. I'm nobody. I came only to visit. One person invited me, and he told me, I want your people, my people to hear you. He care about you. He can be rich, sitting in his own place, enjoy. I tell him, if you invite me, I do not want this land to curse me. I want this land to bless me. I want this land to remember me after I die. So when I die, I said, oh Creator, oh Allah, I try to spread good word. I try to do goodness. Maybe I'm weak, I do not have too much. But I'm trying. I do not have the quality. I do not have the mean. I only have a heart. I only have a soul. I only have my tongue. I can do whatever I can. And it's up to Allah, the Creator, to accept my word or not. It's up to the Creator to open your heart and think what I'm saying wrong. If I'm saying something right, think. If I'm saying something wrong, tell me I'm wrong. If we supposed to be the learned people, the one everybody look at, if we do not do something to our society? Who will do it? Here, it's already fighting each other with a chair. Feed you. You do not work for your ruby. You do not sell your own Islam for a ruby. You do not sell your own faith for anything. If we lost principle, if we lost moral value, tell me
again. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
Allah the Almighty will never change the condition of any nation or individual unless he change what inside. Inside. Do you know why? Because if I have the quality, you will not be here. I will be a leader all over. Because who give leadership? Real leadership. The Almighty. I do not need a ruby. I do not need to go to the jungle or whatever. Give people 100 ruby each and did it running after me. No, please. Their own book, their own belief. How? We listen to the corrupted ones and we listen. Did you read? Did you study? Did you investigate? He said. Do you know for sure if what he said is what the Almighty said, or everybody can say? The colonialism era is gone. What make me and you surrender to the new colonialism? You have no chain. I have no chain. You have no chain in your food. Who's chaining you? Greed, selfishness, blindness, arrogance. Me. This what chain us. Today we have a different chain, and more powerful than the iron chain. Because the iron chain, you want to break it. You do not like it. You want change. But today, the unseen chain, you do not want to break it. Actually, if I try to break it for you, you will kill me. You will kill me if I try to correct you. Leave me alone. Why? This is very famous in life. The corrupted one is held tight in some ruby. You see, he's scared to lose the position. He's scared to lose the power. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what he said? He said, if you do not care about your own people, you're not among us. Tell me, how many masajid in Ranchi is active? How many masajid have teaching? How many masajid teaching their own women and children? And if we do not teach the women and children, what will happen? Where's woman? Woman is a school, the real school of any nation. You teach a woman, you're teaching a nation. You corrupted a woman, you corrupted a nation. Do you know the only place on earth Muslim masajid has no place for women? Only India and Pakistan. All over you find masjid has a place for men and a place for women. Why? Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what he said, don't command them to go and don't deny them not to go. This your own Prophet says that. If your own Prophet says that, what you say? By this way, today I believe without no doubt, Muslim and non-Muslim alike, we have no faith. We have some ritual outside, is not even working inside. Because if you study, if you pray, if you fast, if you do any ritual in Islam, it should reflect in your behavior. It should correct you. It should make you a better person, better manner. Look, for example, the manner and duty of a husband. You see, by neglecting the woman and oppress the woman, what you do? You corrupt her. And once you corrupt her, you forget. The woman you corrupt is the teacher of your own children. The one she teaches them all the habit. It's not you, it's your own wife. She will teach your own kids. Do we care about that? Tell me, The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, the best woman, the most blessing woman among you, the one she asked for a little bit. Why we make marriage so difficult? Why I have 2-3 lakh to get married? Why? For whom benefit? Tell me, for whom benefit? Who will benefit from that? How it look like? How much she spend? How much she spend? Even their own book. The majority of Muslims in India, they against their own religion. And they committing mischief to their own faith. Who you blame? The literate? No. The learned people. The ones they allow it to happen. The ones they support it to happen. In Islam, alcohol is forbidden. And not only that, it's forbidden to buy, forbidden to sell, forbidden to use, forbidden to juice it, forbidden to carry it, forbidden to sit with somebody. Why? Because the amount of mischief happened from alcohol. How many people suffer after they drink? How many people beat their own wife after they drink? Now, what's the difference between that and the one who marry people against their own the religion? I call in the front of Allah, any learned person except to make the Quran, to make the marriage of two people, his mal'oon, he's cursed by Allah. Why? He is the leader. He's the leader of the corruption. He know better not to do that. He know better. He has to give them advice. If I'm the learned person, I'm not selling myself to nobody. But if you love me and you give me ruby and inside of me I sold out, I'm lost. I lost myself. I lost my soul. I lost my identity. You know why? The Almighty said, in the day of judgment, people will tell him, "Oh God, oh Almighty, you make us die twice, and you make us live twice. What is a death twice?" The scholar said, only one death human being tested. What about the another death to make you blind? The ultimate blind is not your eye blind. For Allah the Almighty to make you blind of you doing mischief and you do not see. This is the ultimate blind. To cause torture to other and you do not see. This is the ultimate blind. To not care about other, this is the ultimate blind. This actually, according to Quran, this is a real death by itself. Can we wait until somebody come correct? Islam teach me, I cannot wait. If I die, I will be accountable about me, me only. I have to do what is right, even if the whole mankind against me. Believe me, if you study Islam, you hear about jihad, 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 jihad. Believe me, I study jihad very well. Do you know the ultimate jihad right now? The ultimate jihad in Islam right now? And this is not by me, by a big scholar in the topic of jihad 400 years ago. He said the ultimate jihad in a time of corruption, do you learn? Do you behave according to your knowledge? Do you teach this knowledge back and to be patient of the inviting other? If you do that, you are called in a kingdom of Allah, you are Siddiq. Siddiq meaning it is a second level of prophethood minus revelation. Why? Because today, to set a role model is difficult. Like when I was young, one scholar told me, you see, it's easy to kill somebody, very easy, but it's not easy to guide somebody. It's not easy to teach somebody. It's not easy to grow a tree, but it's easy to cut a tree. Very easy. Ask yourself, is me cutting trees or planting trees? People ask me, do you pray for me? People do not know. I pray for every individual come closer to me. Why? I'm greedy, but different kind of greed. Because you are my tree in this earth. When I die, I leave trees. Trees of goodness. To when I die, when the Creator asked me what you did on earth, I said, Creator, I tried to spread goodness. And this is the evidence, my Creator. This is the evidence. I tell people today, what happens when you die? Who will walk in your burial ground? Who will cry over you when you die? Who will remember you in goodness? Why people will remember you? Ask yourself. Why people will remember you? Why your own neighbor will remember you? Tell me. Only when you're good. I remember when I was a child, 6 years old, I was passing by, and one imam, one scholar, he tried to bury a man, and nobody won't pray over him. Nobody won't pray over him. Nobody won't help him. And the imam crying, and everybody cursing at it. He was stingy. He never helping us. He always have bad manner. He never care about us. Get rid of him. We don't want him. You know, when I was young, I always ask myself, you like it or you don't, whatever what faith you have, you like it or you don't, you're going to die. Nobody stays forever. Do you think about that? Do you prepare yourself for the journey after death? Do you go to the grave land and say, I'm next? When a coffin of a dead man show up, do you stand up with respect? And said, I'm next, and I do not know how is my ending. Do you think this life just as a toy? You're going to live and die, and you have some ruby and some car, and wife and kids, is more deeper than that. Do we really study our own faith? You see, I do not want to repeat myself because the topic is very simple. Very simple, more than you imagine. It's a base. I call everybody, learn your own base. Go back to the base. Don't wait for somebody to teach you. You would be so dumb. Because everybody running after Ruby. Even the learned people. Because if it's learned people doing their job, this will not be our case. We will not be here. We will be active. We will be good to each other. We will be, so do something. Who generate hate? Who generate hate among us and for whom benefit? Tell me, is it benefit for you? Is it benefit for your daughter and husband and wife? Is it benefit for your neighbors? And who teach you that? What I can tell you, I can talk to you about many basic things, but believe me, I'm so sad about the condition of a human being. I'm so sad when we do not care about each other and we become cheap. A few days ago, I came in here. Somebody go and walk over a dog. And the dog behind, the two legs is completely paralyzed. And the dog cry all over, cry. I tell one brother, I said, please, take this dog. Kill him in peace and bury him. Don't let him suffer for days and weeks. You know, I remember according to the real Islam, not the fake Islam you have. The Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. You know what he said? He said, if you go to hunt and you shoot the animal and doesn't come as a killing, what the end of you not care about each other? What happened? You don't know what happened with you is wrong. Because if you love your wife and kids, if you love your own progeny, you should work now to correct society. When they come in a bitter society. If I do not correct this society, if you do not correct it, who will correct it? And who pays the price if you do not correct your own children? Your own children is the first one to suffer. My children and your children. Why? We cannot divorce environment. when they introduce before society. Even if you build a palace and you gate it, it will never secure against the anger of thousands and thousands of people when the time comes. Do you think this way? Doesn't mean I correct society because I'm afraid. No. It should be to correct society for the benefit of everybody, for justice, for harmony, for goodness. Sometimes I ask myself, do we like goodness? If you like goodness and you think you like goodness, you should spread goodness. Very simple. That's why each one of us ask himself, what am I spreading? What is my role in my own society? Believe me, I'm not belong to nobody. Nobody in earth I'm belong to. I'm belong to only one, the one who own my soul. I do not want anything. I have no political agenda. I do not believe in it. I believe in only one thing. We have to correct the heart. That's it. Unless we correct the heart, we not good. Philosophy. Enough arrogance. Enough idea coming from my own brain. We need to follow the Creator and go back and ask Him, please Creator, guide us. Please Creator, light us. What happens if the light go off? Can we? You need battery. You need energy for this light. It can have a bulb. Where do we get the energy from? We need battery. The food is not your battery. The food is the food of your body. But you need the food of the soul. You need wisdom. You need light. You need vision. You need knowledge. And the ultimate one, the knowledge of Him. The wisdom of Him. The Almighty is the only one. Mankind is going in the wrong direction so fast. So fast. And what's the main thing? Greed and selfishness. And greed and selfishness is blind. Arrogance is blind. Believe me, I do not feel like talking too much. I have beautiful people around me. They can talk to you much better than me. Lately, I don't feel like talking. Because I ask myself, what's my intention? And I ask you, what is your intention? According to Islam Niyyah. Without intention, we're not going anywhere. Are you sitting here for entertainment? To check me out? To see who am I? Or try to benefit? Maybe one word can benefit you. This is my philosophy. This is my knowledge. This is my understanding of life. What is it? Listen, maybe one person will benefit you. We have an Imam in Islam called Imam Shafi'i. Rahmatullah alayhi wa sallam. One time he traveled. And a thief came. And he told him, give me everything. He said, take everything I have except my books. He said, why do you need your books for? He said, this is my knowledge. He said, if you say the truth, your knowledge should be in your chest, not in the top of a mule. And he took everything. Later on he said, Imam Shafi'i, a thief, teach me how to gain knowledge. A thief, teach me how to gain knowledge. The same Imam, look at this Imam, big Imam. His mother was very poor. Very poor. She sold her hair many times. She worked as a maid. She slaved herself to work so hard to send him money for learning. He come after 12 years, running after him, asking for money. He put his hand in his bucket. He shakes the bucket. What do you know what he mean? He chews some small coin. His mother screamed, you're not my son. You disgrace me. He said, what I did? She said, is this what I teach you? Is this what all the knowledge you learn? You have no belief? You have no faith? You cannot get and give her whatever you have? He ran and said, forgive me. And he dumped all what he had in his bucket and gave it to the poor girl. She said, now you are my son. He used to say, I learn knowledge from a scholar, and I learn faith and trust in Almighty from my mom. Show me, where is the mom today? She teach her children this way. What we sit down? Oh, how many bingrol, how many gold, how many dress, how many food, how many sweet. But do we care about other?
Khalifa. His name Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Not a Muslim. He tell him, Ali ibn Abi Talib is my sword, the governor. He said, only my son. He said, did you not read Quran and Sunnah? You cannot use your relative as a witness. I cannot accept it, Ya Ali. Do you have anybody else? He said, no. Only Allah knows. He goes to the Jewish person. He said, is this your sword? He said, yes. He said, do you have witness? He said, yes. You have some corrupted witness. The witness, the judge. I know it is him. Because Ali ibn Abi Talib has a special sword, has a certain look, nobody else similar. But he said, we're not following what we want. We follow what Almighty said. Do we do that today as a Muslim? Justice for all. When you're in the front of judge, when you are for justice, it doesn't matter who you are. Allah tell you, all the big, very big. And there was a time when they had little bit of money. And what he did as a governor of the all Muslim, he bought some clothing and he distributed everybody like 2 yards, 2 meters, 3 meters, everybody equal. And because he's big, one time in the beginning of the prayer of Jummah, he stand up and he going to start with a man from the audience. He said, Ya Omar, don't talk. He said, why? He said, your dress is too long. Where do you get the clothing from? Wallahi, I swear by Allah, I will not listen to you until you tell me where is the clothing come from. Do we do that? Do we fear Allah? Sometimes I ask myself, how I can have a beard, how I pray, how I say Allahu Akbar, and I'm so corrupted in my heart. I sold my own faith for ruby. How? I bury the dead, and I'm so corrupted inside. How? How? This is the ultimate blindness one man can get in this life. To be a learned, to be advisor, and so corrupted, and he's the first one to corrupt people. This is the ultimate blindness and the ultimate curse from Allah to a human being. Now, if you are a learned person, ask yourself, who am I? Do I really study? Do I check what the Prophet say? Do I check what Allah say? Do I have humble and humility to Allah and say enough is enough and I make tawbah? Instead of trying to verify with a fake answer? And if you're not a learner, do we wait for the corrupted people to educate us? Islam teach us the leader have one job and the follower have two. One of the first lessons I learned, the leader have one job, the follower have two. Do you know what is that? The follower have to obey the leader if he's honest and follow what Allah said. Once the leader is corrupt, the follower have to correct him and not follow him anymore. And if they follow him, they deserve it. Don't blame the imam. Don't ever. It is you. You make your own imam. You corrupt him. He corrupt you and you corrupt him. And if anybody in here listen to this and do not like it, ask yourself, what I done in my last 20, 30 years in my life? How much goodness I spread? How much teaching I spread? How much change I spread and correction? And how much corruption I spread? How much denying and blind my eyes from reality and from the truth? And ask yourself after that, if you are a Muslim, are we a Muslim?
Anybody in here non-Muslim, please forgive us. We're not a Muslim. We're Muslim by title. We're Muslim by ritual. Like one sheikh when I was young said, don't say Muslim do, because Muslim never do that. Said al-mutamaslim. In Arabic, what it means al-mutamaslim? The one acting like a Muslim. Because a Muslim never do that. A Muslim, if you read the quality of Muslim, you will be crying. Like one man, he embraced Islam in America. You know what he said? You're a priest, but a very learned priest. They took him in a big masjid and said, give a speech. He said, Ya ayyuhal mujrimun, oh the criminal. He said, we're not a criminal, we're a Muslim, you make a mistake. He said, no, I do not make a mistake. You are a criminal. You came to our country, America. You work, you make dollar, you build houses, you got car. Did you teach us what you have? Did you share with us? You are a criminal. You got corrupted and you corrupt us. Instead of being good, you become worse than us. Tell me, what is my duty in this life? What is my role in life? Who I'm working for? For what price? It's questions, but need a heart. Really, it need a heart. It need a life heart. Can I be alive and dead? Yes. Can I be having vision and I'm blind? Yes. Can I have a brain and I'm dumb? Yes. Can I have ear and mouth and I'm mute and deaf? Yes. Allah said in the Quran, those do not get guidance and light. They are like animal and worth. If you study Quran, the first one to be cursed in earth by Allah, the first one to be tortured, not you. The learned people. The learned people is the first one. Who said that? Quran. If you do not believe me, go study Quran. Allah cursed Bani Israel. And when he cursed Bani Israel, he cursed the scholar of Bani Israel. What he did? He saw sins. And he said, stop it. And when the people pushed him, they let it go. And when the people pushed him, they sit with them. And when the people pushed them, they take money from them. And they deny their faith. And at this time, Allah cursing them. When they sold their own knowledge for a ruby. Because you're supposed to be, if you belong to God, you cannot work for money. You work for Him. And he's supporting you in his own way. Or have a small business to give you the minimum requirement. By this way, you do not need to ask nobody. By this way, your tongue will be free. Why my tongue will be free? I'm not belong to groups. I'm not asking for donation. I'm not looking for a job. I'm not looking to be a governor. No. I don't care. I'm saying the truth the way I want. You like it or you don't. You believe or you disbelieve. Yes. We're too far from Islam. We dump the garbage. Who dumping the garbage? We do. Nobody dump. Who tell you do not brush your teeth? Who tell you not be clean? Has anybody beat you? Has George Bush beat you up to tell you not to be clean? Has George Bush beat you up until you have to marry for 10 lakh or 2 lakh or 3 lakh? Tell me, why we complain about other? This is a disease of colonialism. To make you a crying baby. The crying baby, what is it? It's a bad baby. He cried for nothing. Just to have attention and spoil. Want everybody to serve. But he doesn't want to do anything. Because a crying person always wants everybody to do, but he doesn't want to move. Please, I know it is too much for you. Please, wake up. We're going to die. Society is part of us. We part of society. We cannot divorce each other. Muslim and non-Muslim, believer or disbeliever. And if you do not understand that, for a Muslim, go back to Quran. Go back to the basic teaching of the Prophet. And for us, we have to really, really put our hand together and correct. Nobody will do it except us. Meaning you. I'm just a visitor. I'm just a talker. Whatever I do is very minimal. It is you the doer. You the most important one, not me. If everyone take care about one or two neighbor, this will not be the condition of India. If everyone in his own capability, in his own ability of money and knowledge, he teach somebody around, this will not be the condition. This is my message. My message to wake up and ask yourself, do we have a heart? Do we have a soul? Do we care about each other as a human being? This is my message. Please forgive me if I talk too much. Believe me, I do not want to feel like talking too much. Because today is not the time for talking, it's the time of doing. Everybody talk. Everybody give lecture. And everybody MD and DD and CD and DVD and everything DD. People ask me who you are. I'm not MD, I'm not DVD, I'm not CD. No, I'm a man preparing his own grave. So when I go under, I can say, oh Creator, I try to do something. And if after I leave you said, oh, how come today you spend all this money? I do not spend it over myself. I spend it for you. To treat you nice, part of my faith. I have to treat you nice. You are my guest. And in Islam, you give honor to your guest. According to their level, you honor them. And I honor you for being here to listen to me. Maybe by the will of Creator, Allah, the Almighty, change our heart and make us love each other for Him. Take care about each other for Him. Get to each other for Him and take care about India. You love India? Don't love it by your tongue. Love it by your action. Loving it by taking care of each other. Because the battle is so long. And the battle of ignorance and poverty and sickness is more important than George Bush, believe it or not. George, just like that. Please, because everybody's waiting, please.
अपने फोन से एक घंटे के दरमियान वो बातें उन्होंने बड़ी तफसील से कह दी और उसमें सैकड़ों ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे हमें गौर करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए. जनाब ब्रदर अहमद मोहित साहब के बाद अब मैं गेस्ट स्पीकर यानी अतिथि वक्ता जो हमारे हैं मेहमान मुकर्रर जनाब अरविंद पांडे साहब IPS अब बिहार में हैं. जब हम लोग जवान हो रहे थे बी एस से निकल के उम्र में दाखिल हुए थे तो जाहिर है कि उस नस्ल का बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है. मैं बिल्कुल सिर्फ शुजा खावर का एक शेर पढ़ के उनको माइक दे रहा हूँ कि पड़े रहे तो कलंदर पूछे तो कितना है हमें न छेड़ के जीना हराम कर देंगे. करप्शन के हक में जीना हराम कर देने वाले IPS जनाब अरविंद पांडे साहब को मैं जहमत सुखन दे रहा हूँ कि वो इस सेमिनार की कार्रवाई को अपनी गुफ्तगु से मजीद आगे
करता हूँ. जिसे हिंदू धर्म में पर ब्रह्म कहा गया, कुरान शरीफ में जिन्हें अल्लाह के नाम से पुकारा गया, जीसस क्राइस्ट ने जिन्हें अपना पिता करके संबोधित किया, मैं जो बातें बोल रहा हूं वो एक निष्ठावान कट्टर हिंदू के रूप में बोल रहा हूं. यहां मेरे ख्याल से ज्यादा संख्या में हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस्लाम के बारे में ये मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक कट्टर हिंदू, एक शुद्ध हिंदू, प्योर हिंदू जब इस्लाम के बारे में कुछ जानता है या समझता है या कुरान मजीद पढ़ता है तो उसकी धारणा इस्लाम के बारे में क्या बनती है? क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्म के प्रतिनिधि इस्लाम के बारे में कुछ बोलते हैं, इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, और ये सारी समस्याएं इन्हीं दो बोलने वालों के कारण पूरे देश में हो रही हैं। अगर हम अपने देश को देखें तो पूरे विश्व के स्तर पर भी ये देख सकते हैं। ये बात सच्चाई है कि बिना धर्म के हम अपने समाज का, अपने ऊपर, व्यक्ति के ऊपर और अपने समाज के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। हर तरफ आपको नियंत्रित रखने के लिए पुलिस नहीं रहे। बचपन में हम लोग ये कहानी सुनते थे, हो सकता है या आप लोग जानते भी होंगे, बचपन में हम लोगों की माँ बताती थी कि दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर चित्रगुप्त जी बैठे रहते हैं। जहां भी जाओगे, अच्छा काम करोगे तो वही नोट कर लेंगे, बुरा काम करोगे तो वही नोट कर लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा उस पाप पुण्य के हिसाब से। जो बातें आप देखेंगे सभी धर्मों में वही बातें समान रूप से कही है। कयामत का दिन, कयामत के दिन पर ईमान लाना, जिस व्यक्ति को कयामत के दिन पर ईमान है वो वही हर समय वो इंटरनल पुलिसिंग सिस्टम उसके अंदर काम करती रहेगी। अंधेरे में भी रहेगा तो भी हर काम करते समय, कोई भी डिसीजन लेते समय, कोई भी सत्कर्म या दुष्कर्म करते समय उसको ध्यान रहेगा कि कयामत के दिन इस कर्म का फल हमको मिलना है। अल्लाह हमारे साथ जजमेंट जो देगा वो इस कर्म के आधार पर देगा, या तो जन्नत मिलेगी या तो दोजख मिलेगी, इस कर्म के आधार पर। एक बड़ी रोचक कहानी आप लोगों को मालूम है कि नहीं, हिंदू धर्म के विषय में आज तक किसी हिंदू को इस तरह से कन्फेशन करते हुए मैंने नहीं सुना। उस पर ईमान लाने के लिए क्यों कहा गया? क्यों? जैसा रदरफोर्ड ने कहा कि हम सिर्फ रूबी, रूबल, नोट, डॉलर के पीछे हैं, क्योंकि आंखों से वही दिखाई दे रहा है। हम किस गाड़ी, कौन व्यक्ति, असलम परवेज कहाँ है, उनके पास कितना पैसा है, सिर्फ यही देख रही है। लेकिन इस दुनिया के पास इन आंखों के अंदर जो ताकत नहीं है जिस दुनिया को देखने की, उस दुनिया के बारे में ईमान लाना, क्योंकि वो आंखों से तो दिखाई देगी नहीं। वो दुनिया तो मंत्र द्रष्टा ऋषि, जिसको हमारे यहाँ ऋषि कहा गया, मंत्र द्रष्टा, जैसे कि आयतें उतरी, आपके यहाँ कुरान शरीफ में कहा गया कि आयतें उतरी, लिखा नहीं गया उसको, उतरी, अवतरण हुआ। हमारे यहाँ अवतार का कंसेप्ट है कि भगवान का अवतार होता है, बिल्कुल वही चीज है, दूसरे रूप में इस्लाम में कहा गया। आप ये नहीं कहते हैं कि आयतें लिखी गई, आयतें उधरी। हमारे यहां भी कहा गया भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ये अवतार हैं, परम सत्ता के, परमेश्वर के अवतार है। अवतार मतलब ऊपर से नीचे उतरना, आयतें भी उधरी, ऊपर से नीचे आई। तो ये बेसिक जो आधारभूत समानता है सभी धर्मों की, वो बात आज मेरे ख्याल से छात्रों के स्तर से बचपन से ही इस बात की शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि सभी धर्मों में समान बातें कही गई हैं। हम वाटर कह के इसको पी रहे हैं, आप कह के पी रहे हैं, हम पानी कह के पी रहे हैं, कोई जल कह के पी रहा है, पानी वही है, नाम बदल गया है, भाषा बदल गई। धर्म के बिना नियंत्रण संभव नहीं है, इंटरनल पुलिसिंग की मैंने बातें कही। हमारे यहाँ अगर भगवान बुद्ध के जीवनी को, बायोग्राफी को लोगों ने पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था उस समय का, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल रास्ते में मिला, एक इंसान का और सर काटना उसका बाकी था, उसकी उसको मार के उसकी उंगलियों की को अपने माला में डालना उसका बाकी था। भगवान का दोस्त को मिलते हैं, अंगुलीमाल ने कहा ये तो मेरा अब जीवन सफल हो गया, अब तो ये अंतिम इंसान हमको मिल गया जिसकी अमूल्य पात्र अब हमको पहनना है, उसके बाद सारी सिद्धियां हमको मिल जाएंगी। भगवान बुद्ध को कहता है ठहर जा, रुक, कहां जाता है? बड़े शांत भाव से, बड़े शांत भाव से बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया हूं, बहुत पहले ठहर चुका हूं, तू भी ठहर। ये वाक्य सिर्फ एक वाक्य, इतिहास ये कहता है कि सिर्फ एक वाक्य, बुद्ध कहते हैं कि मैं तो ठहर चुका हूं तू भी ठहर जा, ये एक वाक्य अंगुलिमाल के पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता, ट्रांसफॉर्म कर देता, उसकी सारी हिंसात्मक गतिविधियां, सारा उसका आपराधिक मनोवृत्ति मेंसरिया जो था वो खत्म हो जाता है। ये क्या हुआ? अध्यात्म द्वारा आप अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल बाय स्पिरिचुअलिज्म, बाय रिलीजन, बाय मेडिटेशन, जो समस्याएं आज हमारे समाज में हैं, उन समस्याओं का समाधान भौतिक स्तर पर नहीं ढूंढा जा सकता। हम पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी के रूप में 16 वर्ष तक काम करते हुए मुझे बीत गया, और अगर सिर्फ साधन से ही अपराध रुक सकता तो अमेरिका में आज अपराध नहीं होना चाहिए। अमेरिका तो सबसे ताकतवर देश है इस दुनिया का, लेकिन सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध अमेरिका में ही होते हैं, हर तरह के अपराध, स्वयं भी वो अपराध करता है एज अ होल, एज अ नेशन अमेरिका, और अमेरिका में इंडिविजुअल्स भी सबसे ज्यादा अपराधी हैं। तो अगर स्टेट के पास या व्यक्ति के पास ताकत आने से अपराध रोका जा सकता है या गलत कामों को रोका जा सकता तो अमेरिका में फिर अपराध नहीं होने चाहिए थे। अमेरिका जिसके ऊपर ज्यादा अपराध करता, लेकिन अमेरिका में अपराध नहीं होने चाहिए थे, लेकिन होता है। इसका मतलब धर्म के बिना, इबादत के बिना, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के बिना इस समाज को सुधारा नहीं जा सकता और अपराध को रोका नहीं जा सकता, करप्शन रोका नहीं जा सकता। इसलिए धर्म एक आज की सबसे बड़ी आधारभूत आवश्यकता है। शिक्षा की बातें हम लोग करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, एक ऐसे दिल्ली के एक ऐसे पब्लिक स्कूल की घटना अभी छपी है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से अखबारों में देखा होगा, 11वीं की छात्र छात्राओं से संबंधित अखबारों में देखा होगा, वो कहते हुए भी उस घटना की कल्पना करना भी हम लोगों के लिए मतलब अच्छी बात नहीं है, लाजमी में नहीं है। क्या शिक्षा दे रहे हैं? धर्म के बिना कोई शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। एक बड़े इसी तरह के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हुए थे, पिछली बार भी हो सकता है मैंने कहा हो, उसी स्कूल से संबंधित ये घटना घटित हुई। 11वीं की छात्र छात्रा क्लास में क्या कर रहे हैं और उनको हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जो हमने वीडियो कैमरा सहित मोबाइल फोन्स जो हमने ईजाद किया है, उन मोबाइल फोन्स के जरिए वो सारा एक्ट वो 11वीं की छात्र छात्रा का क्लासरूम में किया हुआ वो एक्ट बाकायदे फ्लैश किया जाता है सारे मोबाइल फोन्स पर, उन्हीं उसी छात्र के द्वारा। उसी स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हुए थे, बड़े अपने स्कूल की तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा कि सर आपके यहाँ से जितने छात्र निकले हैं पढ़ लिख के वो इस समय क्या कर रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? बोले कि नहीं आंकड़ा नहीं है, सारे आईपीएस आईएएस हुए, आर्मी ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएएस आईपीएस हुए लेकिन वो देश को लूट रहे हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा आपके पास है? तो बड़ा अजीब बात करते हैं भाई, आईएएस आईपीएस हो गया देश को लूटे, तो अजीब बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस लिए वो होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा, सेवा का साधारण भाषा में नौकर अर्थ है। तो ये नौकरी कर रहे हैं या मालिक बनने के फिराक में पैसा जमा करके कि देश दुनिया का मालिक बन जाया जाए? उसी स्कूल से संबंधित ये घटना है दिल्ली की। धर्म की शिक्षा के बिना, और सभी धर्मों में जो बातें कही गई वो सभी धर्मों के जितने भी पैगंबर आए या जितने भी अवतारी पुरुष हुए सबने समान बातें कही, ये बात बचपन से ही बताया जाना इस देश के लिए खास तौर से आवश्यक है, क्योंकि इस देश के ताकतवर होने के बाद ही दुनिया बदल सकती है, अन्यथा दुनिया में अत्याचार जारी रहेगा जैसा कि अत्याचार आज अमेरिका का चल रहा है। विचारों पर आपके नियंत्रण है, हम आप बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे ख्याल से 50% से ऊपर मोबाइल फोन होंगे, टीवी, जितने भी चैनल्स आ रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है? हिंसा और सेक्स के अलावा और कुछ भी दिखाया जा रहा है? और वो सारे चैनल्स किसके हैं? उसमें जो सीरियल्स बन रहे हैं उन वो सीरियल्स किस देश के सीरियल्स की नकल है? हम जो फिल्मांगन अपने सीरियल्स में कर रहे हैं, अपने फिल्मों में कर रहे हैं, और जिसको देखने के लिए हमने एडिक्ट बना दिया है अपने लोगों को, पूरे देश के लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ये चैनल्स के जरिए, पर्दा से चलाए जाने वाले चैनल्स के जरिए, उनमें क्या दिखाया जा रहा है? क्या आपको बताया जाएगा कि उदारता क्या होती है, दानशीलता क्या होती है, ये बताया जाएगा? पड़ोसी के प्रति सहृदय करुणा भाव रखना चाहिए, ये बताया जाएगा? ये आपको भगवत गीता और कुरान शरीफ में ही बताया जा सकता है, और भगवत गीता और कुरान शरीफ की बातें आपको टीवी चैनल्स में नहीं मिलेंगी। जिन चैनल्स में मिलेंगी उनको देखने की परिस्थितियां इस समय नहीं बनाई गई है, क्योंकि बचपन से ही एडिक्शन डाला जा रहा है। बड़े स्कूल में वही मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से कि मैं, मेरे पास आपके यहाँ जो पटना में जो आपका स्कूल है उसमें मैं जानता हूँ कि जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं और जितने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं उनके बच्चे बच्चियां वहां पढ़ते हैं, और मेरे पास न तो इतना पैसा है कि मैं आपको वहां पढ़ा सकूं अपने बच्चों को, और पैसा रहने पर भी मैं अपने बच्चों को प्रदूषित मस्तिष्क करने के लिए आपके स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। जो स्कूल अच्छा है, आज हम एक गिलास बनाए या कोई फैक्ट्री खोले जिसके क्वालिटी कंट्रोल पर हमारा ध्यान रहता है, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन क्या स्कूलों से जो बच्चे निकाले जा रहे हैं उनमें जो शिक्षा प्रणाली है उनके डिजाइनिंग उसके क्वालिटी कंट्रोल की कोई प्रणाली हमने बनाई? क्या जो शिक्षा प्रणाली हमारी है, शिक्षा का हमारे यहां अगर वेद और उसके दो वेदांग है, उसमें एक शिक्षा टेक्निकल शब्द है हमारे यहाँ शिक्षा का, हिंदू धर्म शिक्षा का सिर्फ इतना मतलब हुआ कि कौन सा शब्द कैसे उच्चारण किया जाए, एक्सेंट सिखाने वाला टेक्निक जो है वही शिक्षा है। शिक्षा की बात नहीं की। जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी महापुरुष हुए पूरे विश्व में, अगर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप देखें, जिस शिक्षा की, जिस एजुकेशन की, किसी डीपीएस किसी ज्ञान भारती में नहीं पढ़े हुए थे, किसी सेंट माइकल में नहीं पढ़े हुए थे। बात जो ब्रदर ने कही, मैं एक निष्ठावान हिंदू के रूप में ब्रदर को देखता हूँ, मैं जब कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो एक निष्ठावान हिंदू की तरह पढ़ता हूँ, और मुझे ये लगता है, ये अंदर से लगता है कि ये बिना ईश्वर के बताए हुए, बिना ईश्वर की कृपा के ये बात कोई बोल ही नहीं सकता धरती पर। एक बड़ी रोचक कहानी है जीवनी, अगर हम पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, 4 साल के थे जब आप, 4 साल के थे तो बात आती है कि फरिश्ते आए, दिल निकाला गया, दिल से निकालकर उसका जो स्याह नुक्ता था उसको मिटाया गया, आते धोई गई, दिल साफ किया गया। क्या कहा जा रहा है इसके मतलब? क्या भौतिक स्तर पर उनका ऑपरेशन किया गया था और स्याह उसमें से कोई काला दाग था जिसको निकाला गया था? ये स्याह नुक्ता क्या था? स्याह नुक्ता काला दाग उसमें जो था, आते साफ की गई, दिल साफ किया गया, क्यों? हृदय वाद पर आधारित, मस्तिष्क से जब आदमी सोचेगा तो वो विनाश की ओर जाएगा, दिल से सोचेगा तो वो ऊंचाई की ओर जाएगा। दिल में जितने भी दाग लगे हुए हैं शिक्षा के माध्यम से, हमारे वर्तमान परिस्थितियों में जितना भी परिवेश है हमारा, उसके कारण दिल में जो दाग लगे हुए हैं उन दागों को मिटाने का मतलब है फरिश्तों से साक्षात्कार होना। ईश्वर स्तर भूतानाम हृदेश अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे यहां गीता में कहा गया कि ईश्वर सर्व भूतानाम हृदेश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं ईश्वर, तो कहा गया। कुरान शरीफ में भी वही बातें कही जा रही हैं कि हृदय को शुद्ध किया, मस्तिष्क को शुद्ध किया, क्यों नहीं कहा गया? अपना शासन चलाने वाला अमेरिका, उसके पास अच्छे दिमाग हैं, अच्छा हथियार बना सकता है, दिमाग ही हथियार बनाता है, दिल तो हथियार बनाता नहीं, दिल तो शेर लिख सकता है, दिल कविताएं बनाता है, कविता की पुस्तकें बनाता है, दिल तो हथियार बनाता नहीं। परमाणु बम बनाने के लिए तो दिमाग चाहिए और दिमाग उनके पास है, तो दिमाग के शुद्धिकरण की बात क्यों नहीं आती? क्योंकि दिमाग ताकतवर होगा तो इंसानियत कमजोर होगी। दिल को ताकतवर बनाने की बात सभी धर्मों में कही गई, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, आज के स्कूलों में वो स्थितियां नहीं है। आज के स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब वो छोटे छोटे बच्चे नौजवान होंगे तो इस देश की, इस पूरे विश्व की क्या स्थिति बनेगी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी थोड़े बहुत जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं वो कितना हंगामा पूरे देश में मचाए हुए हैं, अफसर के रूप में या किसी रूप में, कितनी विकृतियां फैला चुके हैं, और ये पूरी लॉबी जब खड़ी होगी इस देश का क्या होगा, इस पर अभी इसी वक्त सोचने की जरूरत है। जैसा कि प्रोफेसर कहते हैं कि हम आप रहेंगे, आज है कल शरीर हमारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमारे बच्चे जो हैं, सबसे बड़ा स्वार्थी तो वही ना होना हो। फिर हमको याद आ रही इस्लाम की दावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतें किया करते थे और उसमें ये सारी बातें बताई जाती थी। आप लोग सभी लोग सूप पी रहे थे तो हमने सोचा कि ये स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ भी सूप हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा था कि सभी की निगाहें सूप आप लोग पी रहे थे, लेकिन निगाहें आपकी चेतना पूरी, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस, आपका पूरा दिल और दिमाग ब्रदर की ओर था। अच्छा लग रहा था मुझे, फिर उधर बैठ के ब्रदर को मैंने देखना शुरू किया। जब पूरे इंसानियत की भलाई की बातें बोलता है कोई तो वो कितना खूबसूरत लगता है, आप देखिए ना, वहां से देख रहे हो, अपना त्याग करके ये बातें, निश्चित रूप से पूरा देश, पूरा समाज एक खतरनाक दिशा में जा रहा है और उस खतरनाक दिशा से उसको फिर से लौटाने के लिए हमको फिर से धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले 20 वर्षों में पश्चिमी देशों का जो पूरी दुनिया पर साम्राज्य है वो खत्म होने जा रहा है। इतिहास को अगर हम लोग देखें, प्राचीन काल में चीन में, चीन विश्व शक्ति था, भारत महाशक्ति था। मैं हमेशा ये कहता हूं, पाटलिपुत्र से हम लोगों ने 500 साल का स्थायी शासन दिया था, पटना से 500 साल का स्थायी शासन। आज 5 साल तक सरकार चलाने में कितना मशक्कत करना पड़ता है कि सरकार में गिर जाए। 500 साल का स्थायी शासन पूरे देश में, और उतना बड़ा भारत जितना उस समय बड़ा था, आज उतना बड़ा भारत नहीं। 500 साल का स्थायी शासन पटना से हम लोगों ने दिया। पटना और रांची में कोई फर्क नहीं, झारखंड और बिहार में कोई फर्क नहीं, सब कुछ एक। ये जो ऐतिहासिक बात थी कि हम सर्वशक्तिमान थे, विश्व की महाशक्ति भारत था, इंडिया, भारत विश्व की महाशक्ति था। धीरे धीरे मध्यकाल में वो महाशक्ति यूरोप में शिफ्ट हुआ। आप देखें इतिहास को, आप देखें पहले एशिया में वो सारे शक्ति के केंद्र थे, चीन भारत उसमें दो प्रमुख राज्य थे। मध्यकालीन अगर विश्व को आप देखेंगे तो वो महाशक्ति के केंद्र कमजोर हुए और यूरोप में वो शिफ्ट हुआ। हर तरह का डेवलपमेंट इतना तीव्र गति से हो रहा है कि अमेरिका 100-200 साल तक महाशक्ति नहीं बना रह सकता, निश्चित रूप से 20 साल में फिर से वो शक्ति एशिया में केंद्रित होने जा रहा है। चीन, जापान, भारत, विशेष रूप से चीन और भारत। हम लोगों को अपने आने वाली नियति के लिए तैयार करना है, महाशक्ति बनने की नियति, महाशक्ति बनने की डेस्टिनी है हमारी, नियति है, हम उस नियति से बच नहीं सकते हैं। इसलिए उसकी उस नियति से साक्षात्कार करने के लिए अपने आप को तैयार करना, और उसके लिए अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे यहाँ इस रांची की धरती पर भी, पटना में भी फगर मोट गए। और जब ये बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म का कोई बहुत मार्तंड पुरुष बोल रहा है। मुझे विवेकानंद जी की याद आती है, इलेक्ट्रिक एंगोरेटर, यहाँ तो कुछ आप सुन ही नहीं रहे, यहाँ तो एक्शन में नहीं थे। बीएमसीएच में जब भाषण हो रहा था तो मैं बैठ के दूर से सुन रहा था, और मुझे विवेकानंद जी के बारे में जो बातें कही जाती थी, इलेक्ट्रिक फैंगोरेटर, उस तरह की बातें, स्टैंड भी नहीं था तो ब्रदर हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे। मैं आप सभी को यहाँ आया, आपने सुना इतना समय दिया इतनी ठंड में, और डिनर आपका वेट कर रहा है, और ज्यादा प्रतीक्षा मैं नहीं कराना चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, इस तरह की बातें लोग सुनते रहे, क्योंकि टीवी पर और आजकल जो परिस्थितियां हैं उनमें आप इस तरह की बातें नहीं सुन सकते हैं। बार बार हम लोग ब्रदर मोहित को यहाँ आमंत्रित करें और उनकी बातें सुने, जिससे हमारा हमारे दिल में भी अगर कोई स्याह नुक्ता हो, स्याह कोई कलाकार हो, तो वो निकले, और फिर हम सभी लोग ब्रदर मोहित से, मैं अभी कह रहा था वहां बैठे हुए थे हम लोग, मैंने कहा कि हर दिन मुझे लग रहा है कि मैं मेरा ये समय व्यर्थ जा रहा है। आई वेस्टेड माई 42 इयर्स। एक बिहार के पूरे देश के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ हैं, अब वो भी अंदर से सेंट ही है, तब ये सेंट ही ऐसा बोल सकता है। जन्मदिन पर उनसे लोगों ने पूछा, कर छोड़ो छोड़ा, हर दिन एक साल, हर जन्मदिन पर एक साल कम हो जा, कौन जन्मदिन मना के पास, ये भाव आना कि मैं भी मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं। हमारे यहां श्रीमद् भागवत महापुराण एक है, उसमें एक परीक्षित नाम के राजा थे, उनको एक ऋषि ने शाप दे दिया ब्राह्मण ने कि आप 7 दिन के अंदर, तो यह ज्ञात हो जाए कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, उसे क्या करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया ऋषियों का, महात्माओं का, और यही प्रश्न किया। तो कथा है कि सुखदेव जी एक थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, और वो गए, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया उनके सामने। 7 दिन जब रह जाए, ये कंफर्म हो जाए कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तो इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि तब वहां राजा और रंग का कोई फर्क नहीं है, मरना है मरना है। ये स्मृति होना, ये याद बना रहना, या याद किसी न किसी बहाने हो जाना कि मेरी मौत नजदीक आ रही है, इंसान को बदल देगा, उसकी पूरी तकदीर को बदल सकता है, उसकी पूरी गतिविधियों को बदल सकता है। सिर्फ एक याद, हर जन्मदिन पर अगर हम लोग सिर्फ इतना याद करें कि हमारा 1 वर्ष और जीवन का कम हो गया, अच्छाइयों की ओर बढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग हमेशा इस तरह की दावतें, इस तरह के जलसे करते रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर से परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, और अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ब्रदर मोहित के साथ बैठने का मुझे कुछ अवसर मिला। धन्यवाद।
जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो रस्म में शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापन करें, वोट ऑफ थैंक्स के बाद आज के लिए जल्द
और जितने आए भी हाजरीन, शुक्रिया अदा करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे कहा गया। मैं समझता हूं कि जितने भी लोग यहां मौजूद हैं उनकी तरफ से मैं सबसे पहले ब्रदर मोहित को, कि उन्होंने इतनी कीमती बातें की, पूरे इंसानियत का जिस्म बता दिया, इंसानियत का मकसद बता दिया, दुनिया में हम आए हैं किस लिए, और जो क्रिएटर है इंसान को किस लिए भेजा है, अरविंद पांडे जी की बात और ब्रदर मोहित जी की बात दोनों को मिला के मैं समझ रहा कि जो जिम्मेदारी जो क्रिएटर का था उस पे सारी एनर्जी हमारी लग रही है, और जो हमारी जिम्मेदारी है आज हम उसको नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे बनाने वाले ने जो अपना उनका क्रिएशन है इंसानियत, इसके लिए जिम्मा ले रखा है कि रिस्क मैं दूंगा, इसकी गारंटी उन्होंने ले रखी है। چھوٹا سا ایگزامپل ایک ایک منٹ کا دے کے میں ختم کرتا ہوں, جو پریکٹیکل اور صحیح واقعہ ہے. ایک جنگل میں رزق کے متعلق دینے والے کے بارے میں سوچنے کی متعلق لکھا ہے. ایک جنگل میں دو درخت ہیں کھجور کے, ایک میں پکے ہوئے کھجور ہے اور ایک سوکھا درخت ہے. ایک ڈاکوؤں کا گول آتا ہے اور وہ آ کے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, دیکھتا ہے کہ سوکھے کھجور سے ایک پرندہ اڑتا ہے اور بار بار جاتا ہے, وہ پکے ہوئے کھجور کو لیتا ہے منہ میں دانا, پھر سوکھے ہوئے کھجور کی طرف چلا جاتا ہے. وہ شخص نیچے سے دیکھ رہا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے, ایک درخت سے کھجور لیتا ہے اپنے منہ پہ اور سوکھے ہوئے کھجور کے پاس جا کر کے دیکھ ڈراپ کر وہ کیا رہا ہے. جا کے دیکھتا ہے کہ سوکھے کھجور کے اوپر ایک سانپ ہے, بلائنڈ سانپ. اگر انسان کو بنایا ہم کیا کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھ رہا کہ جو ذمہ داری اس کی تھی, جو مالک تو اپنا ذمہ داری کر رہا ہے. پروٹیکشن کے معاملے میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل, یہ سب زندگیوں کو بدلنے والا ایگزامپل ہے اور صحیح حقیقت ہے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ندی کے کنارے, دیکھا کہ ایک کچھوا ندی کے پاس سے کراس کر رہا ہے, اور جیسے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھے کہ ضرور کوئی بات ہونے والی ہے. عجیب سی بات ہے, کچھوا نیوڑا کو نہیں جانتا لیکن وہ چل کے آ کے کنارے سے بڑھ رہا ہے, وہ دریا کے اس پار جا رہا ہے, ندی کو اس پار جا رہا ہے. ان کو فکر ہوئی, یہ ایک ناؤ کو لے کر کر کے سائڈ میں چلنا شروع کیا کہ آخر جا کہاں رہا ہے. چلتے چلتے دیکھا کہ وہ کنارے پہ پہنچا, اور کنارے پہ پہنچ کر کے وہاں کا منظر دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان کے دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہے اور وہ شراب میں دھت پڑا ہوا ہے, بے ہوشی کے عالم میں ہے, اور اس کے سامنے ایک کالا ناگ اس کی طرف لپک رہا ہے, جسٹ اس کو ڈسنے والا ہے. اور اس کو دیکھتا ہے کہ کچھوا تیزی کے ساتھ صرف کنارے آتا ہے اور وہ نیولا جھپٹ کے جا کر کر کے کالے ناگ کو مارتا ہے, اس کو جان مار کر کر کے پھر کچھوا پہ چلاتا ہے, کچھوا واپس جا رہا ہے. وہ جو سویا ہوا تھا بادشاہ, اس کا بیٹا, وہ جب ہوش آیا, یہ بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھ کر کے پریشان کے سامنے سانپ پڑا ہوا ہے بھرا ہوا, پوچھنے لگا, بزرگ کو پہچانتا تھا کہ آپ کیسے. تو ایک لیسن دیا کہ بیٹے تم کو تو نہیں معلوم تم کہاں کس دنیا میں پڑے ہوئے تھے, لیکن جس مالک نے تم کو بنایا تھا اس کا پروٹیکشن کیسے کروا رہا ہے, تمہاری عقل نہیں کام کر سکتی. جو میرا مالک مجھ سے چاہتا ہے, جہاں میری انرجی لگ رہی ہے وہاں نہیں بلکہ جہاں مالک میرا چاہ رہا ہے. اکثر چونکہ میں بایولوجی کا پروفیسر ہوں, اکثر ڈسکشن ہوتا رہتا ہے کہ پرنسپل صاحب زمانہ چاند پہ چلا جا رہا ہے, کمپیوٹرائز زمانہ آ رہا ہے, آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, اس دور میں کہاں ریلیجن کی باتیں کر رہے ہیں. میرے منہ سے اکثر نکلتا ہے کہ بھائی آپ پہلے بتا دو کہ آج کنٹروورسی کے معاملہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت بڑھ گیا ہے, کیا یہ 100% اچیو کر لیا ہے اپنا سکسیس. ایک ڈاکٹر امریکہ کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, میں انہی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا دیں, آپ تو اس بدن پر جس کو مالک نے بنایا ہے لیٹسٹ کمپیوٹر, جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ لیٹسٹ کمپیوٹر بنایا ہے, جو آج سے کمپیوٹر جو بنا تھا اب وہ آج جو مالک نے جو بنایا ہے اس کمپیوٹر کے بارے میں, یہ اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر جو اس کے بارے میں ماسٹری لیتا ہے, کیا آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس جسم کے بارے میں. وہ امریکہ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل صاحب ابھی پورے دنیا مل کر کر کے ابھی اس جسم کے بارے میں 0.5% ہم جان پائے ہیں, 99.5% ابھی انون ہے جس مالک نے اس مشین کو بنایا ہے. ابھی ڈاکٹر محید کہہ رہے تھے کہ دل کا معاملہ, ہماری ساری انرجی برین پر لگتی ہے, और किताबों में जब जाएंगे रिलीजन के किसी रिलीजन के तरफ बढ़िएगा तो मेहनत हमेशा दिल पे होती है। और यही कंप्यूटर बनाने वाले ने कंप्यूटर जो बनाया हर साल की दो साल के बाद आप जानते हैं कंप्यूटराइज जमाना, मैं कहता हूं उन लोगों से जा चुका रहे कि कंप्यूटराइज दे रहा है हर दो साल के बाद कंप्यूटर जो कल का कंप्यूटर था वो अपस्लिट हो रहा, नया कंप्यूटर फील्ड में आ रहा है। क्या कंप्यूटर का फाइनल एडवांस कंप्यूटर आ चुका है? इस मशीन को देखो, जिस मशीन पर ये कंप्यूटर बेस किया हुआ है, कंप्यूटर का फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के शख्स है वो जानते हैं कि ये मशीन इसी के बेसिस पे कंप्यूटर बना हुआ है। इसका सबसे मेन चीज जो पावर हाउस है इंसान का दिल, वो पावर हाउस है जिसको SNPS कहते हैं। ये जब सही होता है, कंप्यूटर का बेसिक लैंग्वेज गीगो आप जानते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिस तरह से इस पावर हाउस में फीडिंग होता है वो लाइट देता है। कहां लाइट देता है? नेक्स्ट पार्ट में, जिसपे हमारी सारी एनर्जी लग रही है वो ब्रेन पे, सेकंड पार्ट आता है वो ब्रेन का, जिसको मदर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। लेकिन उसका कनेक्शन उसे SNPS के साथ लगा हुआ, उस दिल के साथ लगा हुआ है। अगर दिल को मेहनत करके सही नहीं बनाया तो जो रोशनी जो जा रही है ब्रेन पर वो रोशनी सही नहीं जाएगी। और ब्रेन 1000 तकरीबन मिलियन सेल्स उसमें होते हैं, 1000 मिलियन सेल्स, और हर एक सेल एक लिया वो रोशनी हमेशा देता रहता है ब्रेन को। अगर रोशनी सही हुआ तो उसको अकल सलीम कहते हैं, वो सही अकल कहते हैं। अब वो अकल सलीम कहेंगे जो सही ब्रेन है, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है फ्रॉम हार्ट, नाउ द डिस्प्ले यूनिट विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब वो इंसान का हर बदन का हर हिस्सा उस तरह का चलेगा जिसको जिस तरह मालिक ने जिस काम के लिए बनाया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आज की दुनिया में हो रहा है, जहां हम चले जा रहे हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उसी यूनिट का, उसी हाथ पैर आंख कान का काम सही के बजाय गलत रास्ते पे जा रहा है, अच्छाई के जगह बुराई के रास्ते पे जा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि हमने दिन पर मेहनत करना छोड़ दिया। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, ये आज के दिन ब्रदर मोहित का, डॉक्टर अर्जुन पांडे की बात मैं सुन रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी इनके मुंह से जो मैं सुन रहा था। आज हर इंसान का दिल अगर इससे एक लाइट लेने वाला हो जाए, मैं दिल हमेशा सही बताता है, उस फीलिंग को हम सप्रेस कर देते हैं। तो आज का दिन दोनों को जितना भी मैं उनके एहसान मंद मानता हूं, मुबारकबाद देता हूं, उनका थैंक्स और शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वक्त दिया। इसके साथ हमारे दोनों कलीग डॉक्टर प्रकाश उरांव, डॉक्टर कर्मा उरांव, इनके साथ तो हमारी जिंदगियां गुजरी हैं, जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि ये टीचिंग प्रोफेशन से हैं, इनका ब्रेन का एक्टिवेशन उसी तरह से है। जाहिर सी बात है बहुत जमाना हम लोग साथ रहे हैं, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ जितने ऑडियंस हैं, जितने पेशेंटली इस बात को सुना, ये पूरे तस्लीम महल फैमिली, डॉक्टर जमील, डॉक्टर असलम, इन लोगों को जितना भी मुबारकबाद दिया जाए कम है। आज के जमाने में ये दर्द कहां, हमेशा फिक्र रहती है, अमेरिका से घंटों बात करते हैं फोन पे, अब कभी दुनिया की बात नहीं किया इन्होंने, हमेशा यही कहते हैं कि कैसे सोसाइटी बनेगा, कैसे सोसाइटी सुधरेगा, हम तो दुनिया से चले जा रहे हैं जावेद साहब, हम लोग आज न कल चले जाएंगे, ये समाज हमको क्या करेगा, ये रांची में हम पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहां के रहे हुए हैं, ये समाज कैसे सुधरे। मैं कहूंगा जिस आदमी के अंदर में दिल में ये तड़प हो जाएगा, रास्ता देने वाला तो ऊपर वाला है, और यही वो खींच करके बुलाता है इनको, और ये ब्रदर मोहित को लेकर के आ रहे हैं। हम लोग सारे लोग इनके एहसान मंद हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हमेशा ये आए और हम लोगों को सही डायरेक्शन बनाने में एक मेहनत करें, एक कोशिश करें, इस कोशिश से रांची का शहर सुधरेगा। क्योंकि हमारे हर शख्स अगर अपनी जिम्मेदारी को समझ जाए, मैं समझता हूं कि स्टार्ट मेहनत हमेशा अपने ऊपर से होता है, अपनी कमजोरियों को देखने से होता है, جس دن ہم اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں سوسائٹی خود بخود بننے لگے گا, گھر خود بخود سمجھنے لگے گا, محلہ خود بخود بننے لگے گا. ایک دفعہ پھر جتنے آڈینس یہاں ہیں میں ان کو اپنے طرف سے, تسلیم محل فیملی کی طرف سے, سارے لوگوں کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ.
ہم بھی تو اپنے
نشچت نہیں کب آئے
سر. سر یہاں 16 ستمبر کو جائے کہاں ہے بھیا, کہاں ہے؟ ٹھیک ہے.